समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नया दिन है और नई सुबह है और बहुत ही सर्दी इस समय पड़ रही है देश के कई राज्यों पर। और इस बीच आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और साथ हैं शगुन चोपड़ा। नमस्कार शगुन।
नमस्कार देवेंद्र, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क टू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। वेल, वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर यू ऑल एट दिस अर्ली आवर ऑफ द डे, व्हिच इंक्लूड्स न्यूज बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग टुडेज हिस्ट्री, दैट इज 8th ऑफ जनवरी। So make sure listeners to stick around till the end. To start it all, we'll give you the headlines first, shall we?
शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इसमें विशाखापत्तनम के निकट पुदीम अदका में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की अत्याधुनिक हरित हाइड्रोजन केंद्र परियोजना की आधारशिला रखा जाना शामिल है। ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला हाइड्रोजन केंद्र होगा। इस परियोजना पर लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इससे वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और श्री मोदी अनकापल्ली जिले में नक्कापल्ली में औषधि उद्यान की आधारशिला भी रखेंगे। इससे रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे और आसपास के क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री तिरुपति जिले में चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के तहत कृष्णापत्तनम औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला भी रखेंगे।
Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari has announced a scheme for the Pan India setup of Driver Training Institutes DTIs, which will provide incentives for setting up DTIs and additional incentives for the integrated infrastructure of automated testing stations and DTIs. Addressing a press conference, he said that there is lack of skilled drivers in the country and government is committed in setting up more driving training centers in the country. Mr. Gadkari said that road safety was the utmost priority in the meeting with the transport ministers of all states and union territories. Speaking about the transformation in the transport sector, he added that in the meeting, all kinds of issues, solutions and steps were discussed to drive transformation in road and transport sector of the country. The 18th Pravasi Bharatiya Divas Convention will begin today in Bhubaneswar. Odisha government is showcasing the state's rich culture and heritage in front of the non-resident Indians, NRIs, who are coming to India from 50 countries. The convention will begin with the Youth Pravasi Bharatiya Divas event being organized by the Odisha government in partnership with the Ministry of Youth Affairs and Sports. Prime Minister Narendra Modi will take part in the convention tomorrow, while President Draupadi Murmu will preside over the valedictory session on Friday. President Murmu will also confer the Pravasi Bharatiya Samman upon members of the Indian diaspora to recognize their achievements in various fields.
जी, और देश से बाहर रहने वाले तमाम प्रवासी भारतीयों के लिए ये बड़े गौरव की बात होती है, बहुत गौरव का क्षण होता है जब वो इस दिवस में भाग लेते हैं और भारतीयों के लिए भी ये गौरवशाली दिन होता है। इस साल होने वाले प्रवासी दिवस की मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कैंगलू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासियों के लिए विशेष पर्यटक रेलगाड़ी प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से रवाना करेंगे। ये गाड़ी दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी और 3 सप्ताह तक देश के विभिन्न भागों में जाएगी। श्री मोदी सम्मेलन में 4 प्रदर्शनियों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें रामायण की विरासत, प्रौद्योगिकी और विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, मांडवी से मस्कट पर जोर देते हुए भारतीय प्रवासियों का विकास तथा ओडिशा की विरासत और संस्कृति शामिल है। इससे पहले प्रवासी भारतीय दिवस वार्षिक सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया था।
The World Telugu Conference will begin today at Godavari Global University in Rajmahendravaram, Andhra Pradesh. The two-day event will feature prominent Telugu writers, literary icons, former Vice President M. Venkaiah Naidu, former Chief Justice of India N. V. Ramana, governors of both Telugu states, union and state ministers, MPs, artists and actors. Organized to celebrate Telugu language, literature and cultural heritage, the World Conference will include poetry sessions, competitions and cultural activities, among others. A total of 560 poets are set to participate with prizes for winners of statewide poetry competitions held for high school students.
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए आपराधिक कानून दंड केंद्रित नहीं बल्कि पीड़ित केंद्रित हैं और इनका उद्देश्य तत्काल न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने नई दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में इन कानूनों के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष मार्च तक उत्तर प्रदेश के सभी 7 कमिश्नरी में नए आपराधिक कानूनों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि बड़ी आबादी वाले राज्यों में इन कानूनों को पूरी तरह लागू किए जाने से पूरे देश में सकारात्मक संदेश जाएगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के बारे में श्री शाह ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में एक से अधिक फोरेंसिक मोबाइल वैन उपलब्ध होना चाहिए। इस बात की भी नियमित और लगातार निगरानी होनी चाहिए कि अन्यत्र हुए अपराधों के बारे में दर्ज कराई गई कुल प्राथमिकियों में से कितनी संबंधित राज्यों को स्थानांतरित की गई। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रत्येक 15 दिन पर तथा मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से प्रत्येक सप्ताह कानूनों के अनुपालन में हुई प्रगति की समीक्षा करने को भी कहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में खेल और युवा कल्याण विभाग की पार्थ योजना का शुभारंभ करेंगे। राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैन्य बलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भर्ती पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा।
Well, on to sports now. In Hockey India League, Vedant Kalinga Lancers secured their first win of the season as they hammered Sachi Rar Bengal Tigers 6-0 at the Birsa Munda Hockey Stadium in Raurkela last night. We have a report.
Kalinga Lancers produced a stunning performance to thrash Sachi Rar Bengal Tigers 6-0 to register their first win in Hockey India League 2024-25 on Tuesday in Raurkela.
Vedanta Kalinga Lancers local team 3 match hare, chauthe mein pehli jeet mili.
With this, Lancers climbed to 5th while the Tigers stay on the top of the points table. Brinkman in 3rd and 47th minute, Sanjay in 6th, Alexander Hendricks in 9th, Nicholas in 29th and Bobby Singh Dhami in 49th minute scored for Lancers. Goalkeeper Krishan Bahadur Pathak became player of the match. Match between Team Gonasika versus Tamil Nadu Dragons will be played today at 6 p.m. while UP Rudras will face Hyderabad Tufans at 8:15 p.m. You can listen to daily report on Hockey India League on Akashwani. This is Pratishtha Jain for Akashwani News.
तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और देश और दुनिया की खबरों के बाद अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो आइए जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं। शगुन आपके पास।
जी देवेंद्र, वील बिगिन विद चेन्नई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च एंड ट्रेंड इनसाइट्स फॉर इंडियाज फैशन एंड रिटेल मार्केट। एनआईएफटी चेन्नई प्रोफेसर डॉ दिव्या सत्यन ऑफर्स वेरियस एकेडेमिक कोर्सेज, workshops and trend-related consulting services, Vision Next Prayogshala, an initiative for the future of the Indian fashion world by combining artificial intelligence and emotional intelligence. The Vision Next AI lab set up at NIFT Chennai has developed an indigenous forecasting system that caters specifically to the unique dynamics of the Indian market. Its core mission is to map the diversity and complexity of India's fashion landscape, empowering businesses, designers, brands, retailers, artisans and weavers to anticipate and respond to the evolving needs of the Indian consumer. Now on to Bengaluru. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has appealed to the public that there is no need to panic after HMPV was found in 2 infants in Bengaluru. Since this virus exists since its discovery in 2001, it is not a new virus and not related to China. Speaking to media persons after holding a meeting with the health department, Siddaramaiah said HMPV virus is not fatal and those with low immunity, infants and aged persons, fall prey to it, the aged persons. Hence, it is advisable to follow the guidelines issued by the health department to insulate against this virus. Speaking about other things discussed in the health department meeting, the chief minister promised to launch a dedicated campaign to eliminate preventable maternal deaths. He also assured of strict measures to prevent female feticide. Comprehensive reforms will be brought about in the public health system to ensure quality treatment in government hospitals. These measures, he stressed, will reduce dependency on the private hospitals. Now focusing on Hyderabad, the Telangana state government has issued orders to create a new police station for the Hyderabad Disaster Response and Assets Protection Agency, HYDRA. The cases at the HYDRA police station will be booked only on the special instructions of the Commissioner of HYDRA and against land grabbers, encroachers, public property damages, defacement of public property and other cases related to assets protection and other subjects related to HYDRA actions. The main function of HYDRA is to protect assets like lakes, nalas, parks and lay out open spaces, playgrounds, government lands of urban development authorities, urban local bodies and rural local bodies. At ground level, the agency consists of teams monitoring the functioning of parks and lakes. So, Devendra, these are the updates from Chennai, Bengaluru and Hyderabad. Now, you will share the updates from Delhi, Mumbai and Kolkata.
Ji, Shagun, is samay Delhi mein sabse badi khabar chunavon se judi hui hai. Nirvachan Aayog ne Delhi Vidhan Sabha chunav karyakramon ki kal ghoshna kar di. 70 sadasyon wali Vidhan Sabha ke liye matdan 5 farvari ko hoga aur matgarna 8 farvari ko. Mukhya Nirvachan Aayukt Rajiv Kumar ne नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अधिसूचना 10 जनवरी को जारी की जाएगी और नामांकन इस महीने की 17 तारीख तक किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1,55,00,000 से अधिक मतदाताओं के लिए 13,033 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार दिल्ली के मतदाता बड़ी संख्या में मतदान में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि आयोग दिल्ली विधानसभा के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्होंने दावा किया कि 5 फरवरी को मतदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली के लोग बदलाव के लिए वोट करेंगे क्योंकि आप सरकार अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है। उधर आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि दिल्ली की जनता फिर से उनकी पार्टी को वोट करेगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 25 जनवरी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ऑनलाइन चुनाव प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य मतदाता जागरूकता और सहभागिता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही कृषि का दर्जा फिर से बहाल किया जाएगा, जिसे केजरीवाल सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लागू की गई सभी कल्याणकारी योजनाओं को भी दिल्ली में लागू किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कल नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर रेलवे कुली और ऑटो कैब चालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। दिल्ली मंडल कुली यूनियन की ओर से 6 मांग और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की ओर से 5 मांगों वाला एक ज्ञापन केंद्रीय रेल मंत्री को सौंपा गया। ऑटो चालकों ने काली पीली टैक्सी और ऑटो रिक्शा की पार्किंग के चार्ज को कम करने की मांग की, जिसे श्री वैष्णव ने तत्काल मान लिया। मुंबई का रुख करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों की शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए अधिकारियों को 7 सूत्रीय कार्ययोजना लागू करने का निर्देश दिया है। श्री फडणवीस ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, नगर आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अगले 100 दिनों के भीतर पूरे किए जाने वाले प्राथमिकता वाले कार्यों पर विस्तृत निर्देश दिए। उन्होंने ये भी बताया कि इन निर्देशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा 15 अप्रैल 2025 को की जाएगी। सीएम फडणवीस ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अनुपालन में सरकारी वेबसाइटों को अच्छी तरह सुसज्जित और सभी आवश्यक सूचनाओं से अपडेट करने की आवश्यकता बताई। सरकारी कार्यालयों में सफाई पर जोर दिया गया, जिसमें आवश्यक कागजी कार्रवाई को हटाना, पुराने और अप्रयुक्त वाहनों का पंजीकरण रद्द करना और जनता के लिए पीने का पानी और साफ शौचालय सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक कार्यालय में कम से कम 2 सुधार और अभिनव पहल लागू की जानी चाहिए। और चलते हैं कोलकाता, जहां विश्व बांगो वाणिज्य सम्मेलन 5 फरवरी को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां कर रही है। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा अधिकारी और विभिन्न विभागों के मंत्री तथा अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करेंगी। विश्व बांगो वाणिज्य सम्मेलन 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा।
And now moving on to further updates from the world of sports, Asian Games champion in men's shot put Bahadur Singh Sagu has been elected as new president of the Athletics Federation of India, AFI. We have a report, so listen in.
The new AFI president will succeed the outgoing president Adil Sumariwala, who had been serving as AFI president since 2012. It was announced during the 2-day annual general assembly meeting of the federation started in Chandigarh yesterday. Moving on to Malaysia Open Badminton, India's Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face Chinese pair of Zhang Shuxian and Jia Yifan in round of 16 at Kuala Lumpur today. Yesterday they hammered Thai pair in their opening round match. On the other hand, star Indian shuttler Lakshya Sen crushed out of the tournament after facing first round defeat by Chinese Taipei shuttler in straight games. Today, India's Malvika Bansod, Akarshi Kashyap and Anupama Upadhyay will be in action in women's singles, while Priyanshu Rajawat will face Li Shifeng of China in round of 32 of men's singles. Next, we move to World Table Tennis Star Contender 2025, where Indian mixed duo of Manav Thakkar and Manika Batra will face Chinese pair at Lucelle Sports Arena in Doha, Qatar today. The duo yesterday defeated French pair 3-1 in qualifying round 1. In men's singles, Manav Thakkar will face Romanian peddler Ovidiu Ionescu in round of 64 today. Moving towards Indian Super League ISL football, the 16th match week will begin today, as FC Goa will host Hyderabad FC at the Jawaharlal Nehru Stadium in Goa. The match will begin at 7:30 p.m. चिराग झा, आकाशवाणी न्यूज, दिल्ली।
और इस विशेष कवरेज के बाद हम आपको बताते हैं महानगरों के मौसम का हाल। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात करते हैं। सुबह के समय कहीं कहीं मध्यम से घना कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान आज भी 16 डिग्री के आसपास रहेगा, यानी आज दिन में भी शगुन कड़ाके की सर्दी के लिए तैयार रहिए।
और शुड बी जस्ट वार्मली फॉर दिस पर्टिकुलर कोल्ड वेव कंडीशंस, राइट?
राइट। और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहने की संभावना है। उधर मुंबई में आसमान साफ रहने और तापमान 16 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। दिन में पारा 24 डिग्री और रात में 10 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में मौसम कैसा रहेगा?
जी, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ट। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 18 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। नाउ हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। The temperature will hover between a minimum of 16 degrees and a maximum of 29 degrees Celsius.
जी, और मौसम के बाद इतिहास की बारी। आज 8 जनवरी 2025 है। आइए जानते हैं आज के दिन की इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया था। और उसके बाद 1790 की एक घटना, जब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने देश को पहली बार संबोधित किया था। और वर्ष 1800 में ऑस्ट्रिया ने फ्रांस के साथ हुए युद्ध में दूसरी बार उसे हरा दिया था।
Now in 1856, Dr. John Weitz discovered borax, hydrated sodium borate. In 1906, Howrah railway station, Calcutta, was inaugurated. In the year 1925, the first All India Art and Craft Exhibition was inaugurated by Sir William Maries, Governor UP at Kesar Bagh, Lucknow.
जी, और 1929 में आज ही के दिन नीदरलैंड्स और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेलीफोन संपर्क स्थापित हुआ था।
In the year 1947, Rajasthan University was established at Jaipur.
जी, और 1952 में जॉर्डन ने अपने संविधान को आज ही के दिन अंगीकार किया था।
In the year 1965, Star of India, world's largest sapphire, returned to American Museum of Natural History. In the year 1973, space mission of Russia was launched, which was Luna 21. Now, in the year 1991, a local farmer reported a UFO sighting in Trans-Provence, France. France claimed to be perhaps the most completely and carefully documented sighting of all time.
जी, और 2003 में श्रीलंका सरकार और लिट्टी के बीच थाईलैंड के नकोर्न पथों में बातचीत की शुरुआत हुई थी। श्रोताओं, साहित्य, संगीत और कला, ये तीनों विधाएं समाज को नए आयाम देती हैं। कई महान लोगों ने संगीत, कला या साहित्य के रूप में हमें कुछ अद्भुत दिया है जो हमारे लिए धरोहर हैं। आइए याद करते हैं ऐसे ही महान लोगों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है।
राइट।
इस क्रम में सबसे पहले याद करते हैं नई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर साहित्यकार मोहन राकेश को। 8 जनवरी 1925 को जन्मे मोहन राकेश ने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया, कुछ समय के लिए अध्यापन किया। प्रसिद्ध पत्रिका सारिका में उन्होंने संपादन भी किया। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस इनकी प्रमुख कृतियों में से एक हैं। मोहन राकेश ने नाट्य लेखन और उपन्यासकार के रूप में अपनी सशक्त पहचान बनाई। मोहन राकेश की डायरी इस विधा में अच्छी रचना है। मोहन राकेश ने कहानी से साहित्य यात्रा शुरू की। मिसपाल, ग्लास टैंक और मलबे का मालिक आदि कहानियों ने हिंदी कहानी का परिदृश्य बदला और वे नई कहानी आंदोलन के शीर्ष कथाकार बने। हिंदी नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद और जयशंकर प्रसाद के बाद का दौर मोहन राकेश का दौर है, जिसमें हिंदी नाटक दोबारा रंगमंच से जुड़े। ओम शिवपुरी और अरविंद गौड़ सहित अनेक प्रमुख भारतीय निर्देशकों ने मोहन राकेश के नाटकों का निर्देशन किया। आषाढ़ का एक दिन नाटक का एक संवाद आपको सुनवाते हैं।
गई थी कि दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखूं, और देखो सब वस्त्र भिगवाए हो। सूखे वस्त्र कहाँ है माँ? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी।
आषाढ़ का एक दिन के लिए सन 1959 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट महादेव सुब्रमण्यम मणि, एंटोमोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज स्टडीज ऑन हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी। Entomology, which is the branch of zoology that deals with insects. Biologist, ecologist and entomologist, he contributed greatly to the field of entomology. He inspired many through his work in insect taxonomy and high altitude entomology. Because of his notable work, Gordon Edwards from the University of Colorado called him as the Dean of High Altitude Entomology. M.S. Mani, from his humble beginnings, had a challenging life and inspired his students and his fellow scientists and continues to do so.
जी, और जाने माने समाज सुधारक केशव चंद्र सेन की भी आज पुण्यतिथि है। ब्रह्म समाज के संस्थापक सदस्यों में से एक केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ। वो प्रखर बुद्धि, अपनी तर्क शक्ति और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने समाज जीवन में समाज संगठन को प्रमुखता से अपना कार्यक्षेत्र बनाया। केशव चंद्र सेन ने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सुझाव दिया कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करें। हालांकि केशव चंद्र सेन और स्वामी जी के विचार आपस में नहीं मिलते थे, इसी कारण बाद में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ, आधी ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में। अपनी नव संहिता में केशव चंद्र ने विश्व धर्म का प्रतिपादन करते हुए कहा था कि हमारा विश्वास विश्व धर्म है, जो समस्त प्राचीन ज्ञान का संरक्षक है और जिसमें समस्त आधुनिक विज्ञान ग्राह्य है, जो सभी धर्म गुरुओं तथा संतों में एक रूपता, सभी धर्म ग्रंथों में एकता एवं समस्त रूपों में सातत्य स्वीकार करता है, जिसमें उन सभी का परित्याग है जो पार्थक्य है। उनका कहना था कि विश्व धर्म सभी राष्ट्रों तथा धर्मों को एक राज्य और एक परिवार का रूप दे सकेगा। केशव चंद्र 1884 में 8 जनवरी को इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैलीलियो गैलीली। He was the Italian astronomer, physicist and philosopher. He was born on 15th February 1564 near Pisa, and he is the son of a musician. He began to study medicine at the University of Pisa, but changed to philosophy and mathematics, and also initially became professor of mathematics at Pisa. He worked on a variety of experiments, including the speed at which different objects fall, mechanics and pendulums. His formulation of inertia, the law of falling objects, marked the beginning of a fundamental change in the study of motion. He invented an improved telescope which revolutionized astronomy and in turn let him observe and describe the moons of Jupiter, the rings of Saturn, the phases of Venus, sunspots and the lunar surface as well.
Right. और मेरी इवांस नाडिया, जिन्हें फियरलेस नाडिया के नाम से जाना जाता है, आज उनका जन्मदिन है। 1908 को ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्म हुआ। भारतीय सिनेमा जगत की शुरुआती ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों में से वो एक थी, जिन्हें दबंग, निर्भीक, स्टंटबाज या रॉबिनहुड स्टाइल की नायिका माना जाता था। नाडिया ने हिंदुस्तानी सिनेमा के 30 और 40 के दशक में पारंपरिक भारतीय समाज की अनेक मान्यताओं को तोड़ा। उन्होंने कई हिट फिल्में दी। नाडिया की कुछ मुख्य फिल्मों में हंटर वाली, मिस फ्रंटियर मेल, डायमंड क्वीन, स्टंट क्वीन, हिम्मत वाली, सर्कस क्वीन, लेडी रॉबिन हुड और टाइग्रस को याद कर सकते हैं। टाइग्रस मूवी का एक गाना भी हम आपको सुनवाते हैं।
हमको जमीन अपनी सौ जान से है प्यारी, सौ जान से है प्यारी।
Now let's remember Steve Clark, musician. He was a guitarist and songwriter for the hard rock band Def Leppard. In 2007, he was ranked number 11 on Classic Rock magazine's Guitar Heroes. In 2019, he was posthumously inducted into the Rock and Roll Hall of Fame as a member of the band Def Leppard. For you listeners, we have this live performance by him, so listen in. Now, let's talk about Elvis Presley. Today, it's his birth anniversary. Elvis's musical influence, if we talk about them, were the pop and country music of the time, the gospel music he heard in church, and at the all-night gospel sings he frequently attended, and the back R&B he absorbed on historic Bale Street on Memphis as a teenager. With a sound and style that uniquely combined his diverse musical influences, of that time he ushered in a whole new era of the music and popular culture. And listeners, this is a ballad that we have picked for you to listen to, although it was really difficult to choose one. This is I Can't Help Falling in Love.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
और भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नंदा का भी आज जन्मदिन है, यानी जयंती है। 8 जनवरी 1938 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में इनका जन्म हुआ। नंदा ने हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया। अपने समय की बेहद खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार नंदा ने 60 और 70 के दशक में कई फिल्मों में काम किया। इनके पिता विनायक दामोदर मराठी फिल्मों में एक सफल अभिनेता और निर्देशक थे। नंदा को नृत्य और अभिनय के प्रति आकर्षण बचपन से ही था। अभिनेत्री नंदा ने सुप्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया। 1965 में प्रदर्शित हुई फिल्म जब जब फूल खिले से इनकी जोड़ी हिट हुई। धूल का फूल और शतरंज सहित कई सफल फिल्में उन्होंने दी। मधुर मुस्कान की धनी नंदा ने 25 मार्च 2014 को इस दुनिया से अलविदा कहा, लेकिन उनके ऊपर फिल्माया गया ये गाना आप जरूर सुनिए। और इसी खूबसूरत गीत के साथ हम चाहेंगे आप सभी से अनुमति कार्यक्रम आज सवेरे ही संपन्न करने की, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन।
नमस्कार।